जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtotra Satahis Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Janmashtami Mahotsav Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandasya, Jnananjana Shalakaya, Chakshuron Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो प्रसंग ये चल रहा है कि गोवर्धन लीला के समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया था और इंद्र स्वधाम लौट के चले गए थे तो वो दशमी की तिथि थी। एकादशी के तिथि पर नंद महाराज ने एकादशी के व्रत का पालन किया। एकादशी के व्रत के बारे में संक्षेप में हम कल चर्चा कर रहे थे और इस बात पे जोर दे रहे थे कि एकादशी ये हरिवार है, जैसे सोमवार मंगलवार आदि होते हैं, ये हरिवार है। विशेष रूप से इस दिन श्री हरि या श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। हमारा अधिक से अधिक समय इस दिवस पर उनकी सेवा में बिताना चाहिए। वैसे तो हर दिन कृष्ण का दिन है, क्योंकि हर दिन हमें यही कार्य करने चाहिए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हर दिन कृष्णवार है, परंतु विशेष करके एकादशी की तिथि ये हरिवार है, हरिवासर। हालांकि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र थे, परंतु नंद महाराज नारायण या जनार्दन की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत का पालन कर रहे थे। उन्होंने गर्ग मुनि से सुना था कि आपका पुत्र कृष्ण नारायण का अंश है या नारायण के समान इसके गुण हैं, परंतु नंद महाराज को यह कल्पना नहीं थी या जानकारी थी भी तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ा कि श्री कृष्ण नारायण के अंश नहीं है बल्कि नारायण श्री कृष्ण के अंश है। वो भगवान नारायण की सेवा के लिए एकादशी के व्रत का पालन कर रहे थे। तो इस 28वें अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार है। एकादश्याम निराहाराः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुम् नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारः, तो एकादशी की तिथि पर निराहार, कोई आहार नहीं लिया, जल नहीं लिया, कुछ नहीं। क्यों ऐसे? समभ्यर्च्य जनार्दनम्, जनार्दन की पूजा करके, जनार्दन की सेवा करके। जनार्दन अर्थात यहाँ पर नारायण। तो नारायण की प्रसन्नता के लिए, नारायण की सेवा करके उन्होंने पूरा उपवास रखा। वास्तविक उपवास ही है, दिन भर भगवान की सेवा करके उन्होंने आहार या जल भी नहीं लिया। स्नातुम नंदस तु कालिंद्याम, फिर उपवास के बाद में, उपवास तोड़ने के पहले स्नातुम स्नान करना था, तो इस हेतु कालिंद्याम अर्थात यमुना जी में द्वादश्याम जलम आविशत। तो द्वादशी की तिथि पर नंद महाराज यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए, क्योंकि प्रातः काल में ही स्नान करना उचित रहता है। ये स्नान बहुत ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ऐसे पूरी तरह से हमारे जितने भी कल्मश रात को सोने के समय इकट्ठे हुए हैं वो धुल जाते हैं। तमोगुण अस्वच्छता का गुण है और निद्रा ये तमोगुण का कार्य है। तो जब हम सोए हुए होते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए प्रातः काल में तुरंत स्नान करना ये उचित है और आवश्यक है। तो नंद महाराज ने एकादशी के व्रत का पालन करने के बाद फिर जमुना जी में स्नान करना ठीक समझा, द्वादशी तिथि के सुबह सुबह। फिर क्या हुआ? तम गृहीत्वान नयद्भृत्यो वरुणास्यासुरो अंकितम अंतिकम अवज्ञायासुरीम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशी। तम गृहीत्वा अनयत भृत्यः वरुणस्य असुरः अंतिकम्। तो उस समय वरुणस्य भृत्य, एक वरुण के जो कि समुद्र के देव हैं, उनके भृत्य ने, एक उनके सेवक ने गृहीत्वा पकड़ लिया नंद महाराज को, अनयत अंतिकम, और उनको ले आए वरुण देव के पास में, जबकि नंद महाराज स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश कर गए थे तो वरुण देव के इस सेवक ने देखा कि ये कौन आए हैं अभी यहाँ स्नान करने के लिए, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया और वरुण देव के पास समुद्र के वो नदी के नीचे वहां पर ले गए वरुण लोक में। तो क्यों ऐसे किया उन्होंने? अवज्ञाय आसुरीम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशी, क्योंकि उन्होंने आसुरीम वेलाम वेला मतलब समय और आसुरीम मतलब इस संदर्भ में अशुभ, वो भी रात्रि के समय निशी। तो नंद महाराज रात्रि के समय जो कि अशुभ काल होता है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ था और उसके पहले का समय में स्नान करने के लिए जब नंद महाराज गए तो वरुण देव के इस सेवक ने देखा कि ये अशुभ घड़ी है स्नान करने के लिए, ठीक नहीं है, तो इनको दंड देना चाहिए। ऐसे कह के नंद महाराज को गिरफ्तार किया और सीधे ले गए वरुण देव के पास वरुण लोक में। नंद महाराज को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है और मुझे कहां ले जाया जा रहा है और क्यों और क्या होगा वहां जाकर। तो नंद महाराज थोड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए। यहां पर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वरुणस्य असुरः, ये जो भृत्य था वरुण देव का उसे असुर कह के कहा गया है। तो ऐसे क्यों? वरुण देव तो असुर नहीं है, तो उनके सेवक असुर कैसे हो सकते हैं? वरुण देव तो देवता है और उनके सेवक भी देवलोक के ही निवासी होने चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि इसका कारण ये है कि उसने असुरों जैसा काम किया। क्या काम था वो? उन्होंने परम सत्य श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज को गिरफ्तार किया। उनको पता नहीं था कि ये कौन है, ये भगवान के पिता है, तो कैसे गिरफ्तार करना चाहिए इनको, नहीं गिरफ्तार कर सकते। कई बार श्री कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में कोई जिलाधिकारी का या कोई बड़े अधिकारी का फोन आता है कि आपके मंदिर में दर्शन करने फलाना कोई मंत्री आ रहे हैं या कोई न्यायाधीश आ रहे हैं हाई कोर्ट से या कोई ये उस प्रांत के उस राज्य के राज्यपाल आ रहे हैं, ऐसे अक्सर होता है। और कई बार ऐसे भी फोन आ जाता था कि वो जो मंत्री हैं उनके माता पिता आ रहे हैं या उनके बच्चे आ रहे हैं, उनका परिवार आ रहा है, तो कृपया भक्तों को कहिएगा उनका वो ख्याल रखें। तो भक्त लोग फिर जाते थे उनका ख्याल रख, उनको स्वागत करके दर्शन कराते थे, थोड़ा प्रसाद देते थे, मंदिर का दर्शन कराते थे, फिर जगह जगह प्रभुपाद के कमरों को दिखाते थे, बताते थे यहाँ प्रभुपाद जी रहे थे, प्रभुपाद ने क्या किया, कैसे संस्था की स्थापना की, किस प्रकार से प्रचार किया, तो फिर वो सब वो संतुष्ट होके चले जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि कोई बड़े आदमी आए थे, बल्कि वो नहीं आ पाए, उनके कोई रिश्तेदार आए थे, कोई भक्त वहां उस समय थे नहीं, तो उनका अच्छी तरह से स्वागत नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा था। क्योंकि किसी रिश्तेदार का अपमान करना मतलब उस व्यक्ति का अपमान करना। इसलिए कई बार जो भी किसी बड़े व्यक्ति के रिश्तेदार होते हैं वो ऐसे रिश्ते का लाभ उठाते हैं ना, कहीं भी जाते मैं इनका ये हूँ, भले दूरी का रिश्ता हो तो कोई ना कोई नाम निकाल कर वो बड़े आदमी का वो कहेंगे मैं इनका ये रिश्ता हूँ इनका, मैं बहुत निकट का आदमी हूँ। वैसे वृंदावन में बहुत ऐसे लोग आते हैं, हमारे ये मंत्री हैं, हमारे निकट के मित्र हैं, वो आदमी आएगा वो ये आदमी है, ये हमारे बहुत अच्छे करीब के हैं, तो सभी लोग कोई बड़े आदमी का नाम लेकर कुछ विशेष सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बड़ा आदमी यदि होता है, जब वो आता है उसका स्वागत करना तो आवश्यक है ही, और उसका स्वागत नहीं होगा तो उसके अपमान के बराबर होता है। उसी प्रकार से उसके कोई निकट के व्यक्ति आए, उसके कोई खास व्यक्ति आए और उनका भी यदि स्वागत ठीक से न हो तो वो अपमान के बराबर है उस व्यक्ति के लिए भी। तो यह नंद महाराज कृष्ण के पिता हैं, भगवान के पिता। भगवान तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, और ये भगवान के पिता हैं, तो स्वागत करने की बात तो दूर है। वरुण देव के इस भृत्य ने गिरफ्तार कर दिया, गृहीत्वा अनयत अंतिकम, और ले गए वरुण देव के पास कि इसने नियम भंग किया, आपके पास ले आ रहा हूं। भगवान के पिता को ऐसे तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उस समय वो सेवक नहीं जानता था कि नंद महाराज कौन है। जैसे कि परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यासनम हरिः। वो नंद महाराज और यशोदा माता के बारे में पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय। श्रेय यहाँ इस संदर्भ में मतलब है तपस्या, कोई यज्ञ, कोई पुण्य, कोई सेवा। उन्होंने ऐसे क्या श्रेय, ऐसे क्या तपस्या आदि उन्होंने किया। किम अकरोत् श्रेय, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने ऐसे क्या किया होगा पिछले जन्म में कि उनको ऐसा महोदयम, महा उदय, ऐसा अहो भाग्य जीवन में आ गया कि भगवान उनके पुत्र बने। और नंद महाराज की बात क्या, माता यशोदा के बारे में क्या। यशोदा च महाभागा, वो तो महाभाग्यवान स्त्री हैं। क्यों? क्योंकि पपौ यस्या स्तनम हरिहि, क्योंकि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने उनका दूध पान किया। तो ये नंद महाराज और माता यशोदा कितने भाग्यशाली हैं, और न जाने इन्होंने क्या किया होगा पूर्व जन्मों में ऐसे भाग्य पाने के लिए कि स्वयं श्री हरि उनका पुत्र बन गए। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक प्रसंग का वर्णन करते हैं, जिसमें रघुपति उपाध्याय नाम के एक भक्त, शुद्ध भक्त, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि कृष्ण के बारे में कुछ कहो, तो वो सुंदर सुंदर श्लोक कहते हैं। और फिर वो एक श्लोक ऐसा कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीताः अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, अन्य लोग होते हैं ऐसे, जो कि श्रुतियों की उपासना करते हैं। श्रुतियों को अर्थात वेदों को, उपनिषदों को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं। स्मृतिम इतरे, और इतर लोग ऐसे हैं जो स्मृति शास्त्रों का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रवण कीर्तन करते हैं। और अन्य हैं जो भारतम अन्य अर्थात महाभारत आदि जैसे इतिहास शास्त्रों को पढ़ते हैं, इनकी सेवा करते हैं श्रवण करने से। तो क्यों पढ़ते हैं ये सब? भजन तो भवभीताः, वो ऐसे भजन इन शास्त्रों का करते हैं, इनकी सेवा करते हैं भवभीताः, इस भवसागर के भय से, यहाँ के भवसागर के तापों से, यहाँ के कष्टों से बचना चाहते हैं। हो सकता है मुक्ति भी चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं। परंतु रघुपति उपाध्याय कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं क्या करता हूं, मैं तो नंद महाराज की उपासना करता हूं जिनके आंगन में परब्रह्म खेल रहे हैं, परब्रह्म श्री कृष्ण। यस्यम इह नंदम वंदे, मैं इनकी वंदना करता हूं, नंद महाराज की, कृष्ण के भी नहीं, नंद महाराज की वंदना करता हूं, क्योंकि उनके आंगन में परम सत्य परब्रह्म श्री कृष्ण श्री हरि एक साधारण बच्चे की तरह खेल रहे हैं, लौट रहे हैं। तो ये नंद महाराज कितने महान होंगे, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो इस प्रकार से नंद महाराज का स्थान क्या था, वरुण देव के इस सेवक ने नहीं जाना, इसलिए शुकदेव जी यहाँ उसे असुर कह के कह रहे हैं। और काल भी असुरी काल था, असुरी आसुरी वेलाम, एक अशुभ घड़ी। अशुभ घड़ी क्यों? वैसे हुआ ये, जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो उस दिन एकादशी हुई थी वो उसकी जो अवधि थी बहुत कम थी। आप तो जानते हैं कि सूर्य के हिसाब से जो दिनदर्शिका होती है उसमें हम ये सोमवार मंगलवार वगैरह सब मानते हैं, और 365 दिन होते हैं दिन में सूर्य के हिसाब से। परंतु वैदिक जो दिनदर्शिका होती है वो चांद के ऊपर आधारित होती है, और इसमें हर दिन को तिथि कहते हैं। तो जब से चांद फिर से वही स्थान में आता है एक तिथि होती है। कभी कभी दिन के हिसाब से सूर्य के जो हिसाब से जो दिन गिने जाते हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी ये तिथि 24 घंटे से कम होती है, कभी ज्यादा भी होती है, लगभग समान होती है। लगभग तिथि के हिसाब से देखा जाए तो एक महीना 29 दिन के बराबर होता है, और सूर्य के हिसाब से कभी 30 दिन होता है, कभी 31 दिन होता है। तो इस एकादशी की तिथि पर ऐसे हुआ कि वो तिथि केवल 18 घंटे की थी, बहुत छोटी एकादशी की तिथि थी, और एकादशी तिथि के समाप्त होने के बाद 6 घंटे भी बीत गए थे, और पारण के समय के लिए बहुत कम समय रह गया था। और ये 6 घंटे बीत गए सूर्योदय के पहले ही, बहुत जल्दी बीत गए, जबकि अंधेरा था, रात थी अभी तक। इसलिए नंद महाराज ने ठीक समझा कि पारण का समय तो अंधकार में ही हो रहा है, तो अभी यदि पारण नहीं करेंगे तो मेरा व्रत टूट जाएगा, इसलिए वो उठे जल्दी। हालांकि इतने रात में ऐसे नहीं स्नान करना चाहिए, परंतु द्वादशी का सही तरह से सम्मान करने के लिए, एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए, शास्त्रों के नियमों का पालन करने के लिए नंद महाराज ने ऐसे किया था। तो ये इतनी गहराई में बात है, वरुण देव के सेवक को नहीं पता था। और दूसरी बात, यदि ऐसे नहीं भी हुआ होता और यदि नंद महाराज के तरफ से गलती हुई भी होती तो ये छोटी गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी। उनका उद्देश्य था द्वादशी का सही तरह से पालन करना चाहिए, एकादशी के व्रत का पूर्ण होना चाहिए, तो ये ऐसे छोटी गलती के लिए कोई इतना बड़ा दंड देना उचित नहीं होता है। और ये समझना चाहिए हमें कि ये यदि नियम का थोड़े तरह से भंग हुआ भी तो क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। कभी कभी ऐसे हो जाता है, लोगों को नियम आग्रह हो जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नियम आग्रह दो प्रकार के होते हैं। नियम आग्रह मतलब इतने आतुरता से इतने कट्टरता से नियमों का पालन करना कि व्यक्ति नियमों के उद्देश्य को भूल जाए और नियमों को ही सर्वस्व माने। दूसरी ओर व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कई जो नियमों का आग्रह करते हैं, अर्थात मानते ही नहीं है, मनमाने ढंग से अपना जीवन जीना चाहते हैं, शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। परंतु नंद महाराज तो ऐसे नहीं थे, वैदिक पद्धति के अनुसार नियमों के अनुसार वो चलना चाहते थे। तो फिर जब वरुण देव के सेवक ने देखा कि ये आए हैं, उनको समझना चाहिए था कि किस उद्देश्य से आए थे। प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे, उस समय प्रथा थी, आधुनिक काल में अभी 40 साल बाद में अभी तो सभी सन्यासी जाते आते हैं, परंतु उस समय में किसी सन्यासी को समुद्र पार करके जाना ये इतनी साधारण बात नहीं थी। कई ऐसे लोग थे जो नियम आग्रह की भावना में थे और वो सोच रहे थे कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, ये सन्यासी होते हुए भी ये समुद्र पार कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये दोष है उनका। परंतु प्रभुपाद जी समुद्र पार करके गए, किसके लिए गए? अपने कोई स्वयं के कार्य के लिए नहीं गए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं गए, वो अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए गए, ताकि सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन फैल जाए, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को फैलाने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए। तो इसलिए कोई गलती नहीं थी। उसी प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद जी पहले अमेरिका में पहुंचे तो वहां अनेक तरुण और तरुणी आया करते थे उनके पास, और वो कीर्तन करते थे, थोड़ा बहुत प्रवचन दिया करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। और वहां की संस्कृति ऐसे थी कि बिना विवाह किए हुए तरुण और तरुणी जो साथ में रहते थे, आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सब भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है, परंतु बिना विवाह किए वो रहते थे साथ में। तो प्रभुपाद जी एक 70 वर्ष के सन्यासी अभी ऐसे माहौल में आए या स्त्री और पुरुष साथ में रह रहे हैं बिना विवाह किए हुए भी, तो उन्होंने देखा कि ये सब तो ठीक नहीं है। वो उनके प्रवचन में आ रहे थे, कीर्तन में शामिल हो रहे थे, परंतु उन्होंने देखा कि हालांकि ये भक्ति में रुचि ले रहे हैं, परंतु इनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, भक्ति तो स्वीकार कर रहे हैं तो धीरे धीरे रुचि ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि विवाह होना चाहिए आपका, नहीं तो आप साथ में नहीं रह सकते। तो फिर उन्होंने देखा कि विवाह कराना भी है तो कौन करेगा, अमेरिका में थे ना, यहाँ तो है, यहाँ यदि है तो हम विष्णु लोक प्रभु को बुला सकते हैं, ये और किसी वैष्णव भक्त पुजारी को बुला सकते हैं या रोहिणी कुमार प्रभु को बुला सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी वहां गए, क्या करते, किसको बुलाते, तो उनको स्वयं करना पड़ा, उनको विवाह संस्कार करना पड़ा पहली बार। तो भारत में कई लोगों ने निंदा किया कि सन्यासी को ऐसे क्यों करना चाहिए, विवाह संस्कार एक सन्यासी को नहीं करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए, परंतु परिस्थिति भी असाधारण थी, और किस उद्देश्य से ये कर रहे थे, उनकी रुचि नहीं थी केवल ऐसे विवाह करते बैठे, परिस्थिति ऐसी थी कि यदि वो नहीं करते तो ये लोग इनके भक्ति के लिए, इनके धर्म के लिए अच्छा नहीं होता, ये और पाप का जीवन जीते रहते। और धीरे धीरे से जैसे संस्था के अंदर भक्तों की संख्या बढ़ी और भक्त थोड़े परिपक्व हो गए, तो फिर उनमें से जो ब्राह्मण बने दूसरी दीक्षा लेकर, और जो थोड़े बहुत ब्राह्मणों के गुण दिखाने लगे और थोड़े प्रशिक्षित हुए यजन याजन के कार्य में, यज्ञ आदि संपन्न करने में, तो प्रभुपाद जी ने उनको सौंप दिया कि भी आप ही करो, आप गृहस्थ हो और ब्राह्मण हो आप, तो आप ये विवाह यज्ञ आप कर लो। परंतु जब वहां कोई नहीं था तो प्रभुपाद जी को करना पड़ा। और एक उदाहरण, प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को संन्यास दिया, ऐसे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दी जो कि न केवल भारतीय नहीं थे, वो ब्राह्मण कुल के भी नहीं थे, तो कैसे वो ब्राह्मण दीक्षा दे सकते थे। लेकिन किया प्रभुपाद जी ने पंचरात्रि का विधि के अनुसार। तो यहां पर कई लोगों ने निंदा की कि ऐसे कैसे उन्होंने किया, ये गलत किया। परंतु किस उद्देश्य से उन्होंने किया ये भी देखा जाना चाहिए था। तो ये निंदा जो थी प्रभुपाद जी की वो उचित नहीं थी। जो ऊंचा उद्देश्य था, जो विशेष परिस्थिति उस समय थी, उसको देखा जाना चाहिए था। तो ठीक उसी प्रकार से यह नंद महाराज ने किस उद्देश्य से एक छोटे से नियम का उल्लंघन किया, कोई बड़ी बात नहीं थी इतनी, तो गिरफ्तार करना ऐसे उचित नहीं था वरुण देव के इस सेवक के लिए। और वास्तव में कारण ये था इस लीला के लिए कि श्री कृष्ण वरुण देव को कृपा देना चाहते थे। तो ये लीला हुई, भगवान ने ऐसी लीला कर दी और बाद में चल के वरुण देव कहने भी वाले हैं श्री कृष्ण से, अवज्ञाता मामकेन मूढ़ेन, कि मेरे अज्ञानी और मूर्ख सेवक ने ऐसे काम आप किया है, आपके पिताजी को गिरफ्तार किया है उसने। वरुण देव क्षमा याचना करेंगे बाद में जाके, लेकिन इस समय गलती तो हो ही गई, नंद महाराज गिरफ्तार हो गए। फिर आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये श्लोक यहाँ पर है, आइए हम इसको पढ़ते हैं।
चुक्रुषुस्तम पश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः भगवांस्तद् उपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्। तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभुः। चुक्रुषुस्तम् अपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः भगवांस्तद् उपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्। तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभुः।
गाइए बोलिएगा।
चुक्रुषुस्तम् अपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः भगवांस्तद् उपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्। तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभुः।
हे राजन्, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। तुरंत कृष्ण समझ गए कि क्या हो रहा है, और जैसे ही नंद महाराज को वरुण देव के सेवक ने नीचे पानी में खींच लिया, तो नंद महाराज के साथ में जो गोपगण आए थे वो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, कहाँ गए नंद महाराज जी? अरे नंद महाराज जी चले गए, एक व्यक्ति आके उनको खींच के ले गया जल के भीतर। तो बहुत चिंतित हो गए और कृष्ण और राम पुकारने लगे, हे कृष्ण हे राम इति गोपकाः भगवान सद उपाश्रुत्य। तो चक्रुषु मतलब जोर से पुकारा, अपश्यंतः ताम, जब उन्होंने नंद महाराज को अपश्यंतः नहीं देखा तो कृष्ण रामेति गोपकाः भगवान सत उपश्रुत्य, तो उनको बुलाया जोर से। और उप जैसे हम चर्चा कर चुके हैं मतलब पास, श्रुत्य मतलब सुना, वैसे श्री कृष्ण उस समय पास में नहीं थे, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं कि पास से सुन लिया। उस समय श्री कृष्ण अपने निवास स्थान में थे, अपने फूलों के शैया पर आराम से विश्राम कर रहे थे, और उनका घर वहां से थोड़ी दूर पर था, इतने पास नहीं था। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उपश्रुत्य, श्री कृष्ण ने पास से ही सुना, क्योंकि श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण सब जगह हैं, और श्री कृष्ण सबके निकट हैं, सबके आत्मा के आत्मा हैं, और इसलिए श्री कृष्ण हम सबकी पुकार जल्दी से ही सुनते हैं। इस संगीत कहाँ से है? गाड़ियों का किसी को रहना चाहिए, काफी समय से चल रहा है। तो वरुण देव के सेवक ने जब छीन लिया और उस समय गोपों ने देखा कि नंद महाराज अब यहां पर नहीं है, तो वो चिल्लाए जोर से, परंतु श्री कृष्ण काफी दूर थे, परंतु क्योंकि श्री कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, वो हर एक अणु में हैं, आत्मा के भी आत्मा हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऐसे यहां कह रहे हैं। और इसका तात्पर्य यह भी है कि हालांकि भगवान बहुत दूर पे हो भी, लेकिन यदि हम उन्हें हृदय से पुकारें जिस प्रकार से गोपों ने पुकारा हे कृष्ण हे राम, कृष्ण और बलराम को, तो भगवान को आने में देरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी सरकारी दफ्तर में अप्लाई अप्लाई करते रहते रिप्लाई नहीं आता, मतलब कोई जवाब नहीं आता, हम करते रहते हैं प्रयत्न करते रहते हैं कि कोई जवाब मिले, जवाब ही नहीं आता, परंतु श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। जब गजेंद्र बहुत पीड़ित अवस्था में थे तो उस समय उन्होंने जब भगवान श्री हरि का गुणगान किया तो तुरंत श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर सवार होकर चले आए, तुरंत पहुंच गए वहां, उनको बिल्कुल देर नहीं लगी। उसी प्रकार जब द्रौपदी देवी का वस्त्र हरण हो रहा था, जब द्रौपदी देवी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा श्री कृष्ण को, तो तुरंत श्री कृष्ण वहां पर अवतीर्ण हो गए वस्त्र के रूप में। शरणागत होकर जब भक्त पुकारता है तो भगवान कितने भी दूर क्यों न हो, अपने गोलोक वृंदावन में क्यों न हो, वैकुंठ जगत में कहीं भी क्यों न हो, शीघ्र ही तुरंत पहुंच जाते हैं भक्त के पास। जब वनवास में पांडव थे और उस समय जब दुर्वासा मुनि वहां पर आए थे अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर, और प्रसाद उन सबको देना था और दुर्योधन के षड्यंत्र से दुर्वासा मुनि उस समय पहुंचे जबकि द्रौपदी ने भोजन ले लिया था और उसके बाद द्रौपदी का अक्षय पात्र भोजन नहीं दे सकता था उस दिन के लिए। तो द्रौपदी देवी सोच रही थी कि क्या किया जाए, अब हमारा सारा कुल का विनाश हो जाएगा, वैसे भी इतनी कठिनाइयों से हम गुजर चुके हैं, हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया, मेरा अपमान हुआ, भरी सभा में वस्त्र हरण करने का प्रयास किया दुशासन ने, तरह तरह के कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ा और अब ये हमारे शक्तिशाली 5 पति हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि के क्रोध के सामने ये क्या कर सकेंगे। तो एक ही आसरा, एक ही आश्रय था उनके लिए, श्री कृष्ण। और जैसे ही हृदय से द्रौपदी देवी ने श्री कृष्ण को पुकारा, यद्यपि श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे और पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ में वो उत्तर पूर्व भाग में थी भारत की, कितने हजारों किलोमीटर का अंतर है, परंतु श्री कृष्ण तुरंत पहुंच गए द्रौपदी देवी के कुटिया में। अरे द्रौपदी, तुमने याद किया मुझे, वैसे ही आ गए। तो ये है कृष्ण उपश्रुत्य, कृष्ण को आने में देरी नहीं होगी, परंतु हमारी पुकार भी वैसे होनी चाहिए जैसे कि द्रौपदी की थी, जैसे कि गजेंद्र की थी और यहां जैसे कि गोपों की थी। हृदय से जब हम पुकारेंगे भगवान को, भगवान अवश्य आएंगे, हमारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, इसलिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये सब बड़े चिंतित अवस्था में बहुत भयभीत होकर भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे थे सारे गोपगण, जब नंद महाराज पानी में चले गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, और इधर उधर भागते रहे, अंततः सीधे भागे श्री कृष्ण के पास। ऐसे आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि भी वहां पर चले गए कि हे कृष्ण, जो कि पुण्यात्माओं को वरदान देने वाले हैं, हे कृष्ण जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, हे कृष्ण जो पीड़ितों के बंधु होते हैं, और हे कृष्ण जो पतितों का उद्धार करते हैं, अभी हम सबको बचाओ, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। नंद महाराज जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय हैं, ऐसे नंद महाराज को एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है जल के भीतर ही, अभी क्या किया जाए हमें पता नहीं, आप ही कुछ करिए अभी। तो श्री कृष्ण ने तुरंत समझ लिया, क्या समझ लिया, पितरम वरुण अहरितम, कि मेरे पिता को वरुण देव के सेवकों ने अपहरण कर लिया है और उनके लोक वरुण लोक में वो ले गए हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने वाला हूँ, मेरा तो काम यही है भक्तों की सेवा करना। गोपों ने कहा था त्रायताम त्रायताम, त्राही त्राही मचाया कि आओ बचाओ बचाओ, क्षत्रायते इति क्षत्रिय है ना, ये आप जानते हैं, त्राय मतलब रक्षा करना। तो गोपगण आए थे त्रायताम त्रायताम, और फिर बाद में कहने लगे अत्र आयताम अत्र आयताम, त्रायताम करने के लिए आयताम, रक्षा करने के लिए आपको आना होगा, जल्दी चलो, ये हम बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया ये वरुण देव के सेवक का काम है, तो तुरंत वहां पर पहुंच गए श्री कृष्ण। तद अंतिकम गतो राजन, तद तद अर्थात वरुण देव, अंतिकम मतलब पास में, तो वरुण देव के पास में सीधे पहुंच गए श्री कृष्ण, ज्यादा देर नहीं लगी उनको, नीचे यमुना जी में जाके छलांग मार दी पानी में और सीधे वरुण लोक चले गए। उधर जितने भी ब्रजवासी थे, गोपियां भी आ गईं, ये सब शोर मच रहा था यमुना के तट पर, क्या हो गया क्या हो गया, नंद महाराज नहीं है। तो सारे ब्रजवासी वहां आए, उन्होंने देखा कि अरे नंद महाराज तो गए, अभी कृष्ण भी चले गए। तो सब रो पड़े और वहीं पे गिर पड़े। उनके ऐसे उनको महसूस हुई कि उनके शरीर से सारी ताकत सारी शक्ति निकल गई और बस जहां खड़े थे वहीं पर सब गिर पड़े। उनमें से प्राय सभी बेहोश हो पड़े। श्रीमती राधा रानी भी बेहोश हो गई थी, कवि कर्णपुर कहते हैं। फिर जो एक दो गोपियां जो पास में जो थीं, जो अभी तक होश में थीं, उन्होंने थोड़ी रुई वगैरह ली, उनके नसिकाओं के पास में रखा, देखा कि वो हिल रहा है थोड़ा बहुत, तो लगा कि हाँ ये जीवित हैं। फिर उनमें से एक गोपी बहुत बुद्धिमान थी, तो उसने कहा कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं, तुरंत राधा रानी झक गए। और फिर जब आंखें खुली और इधर उधर देखा कि कृष्ण नहीं है, फिर से उदास हो गए। तो सारे ब्रजवासी उदास हो गए क्योंकि कृष्ण ही उनके प्राण के धन थे। कृष्ण के बिना क्या जीवन, ये है वृंदावन। इस प्रकार की आसक्ति ब्रजवासियों की थी कृष्ण के प्रति कि थोड़ा एक क्षण भी कृष्ण नहीं रहते तो उनको बहुत विरह की भावना होती, निर्माण हो जाती। हालांकि ये जो गोपियां थीं, ये कृष्ण को दिन में बहुत कम समय के लिए प्रत्यक्ष रूप से देखा करती थी, जब कृष्ण सुबह को गायों को चराने के लिए जाते और शाम को जब वो गायों को लेकर अपने मित्रों के साथ चले आते। परंतु उनके हृदय में आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र थी और एक ही गांव में रहती थी, इसलिए वो मानती थी कि कृष्ण हमारे घर में ही रहते हैं। और इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी चले गए हैं तो हाय हाय अब क्या होगा, नंद महाराज भी नहीं है, अब श्री कृष्ण भी चले गए, अब क्या होगा। सभी लोग वहीं पर गिर पड़े। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वानाम अभय दो विभुहु। अंतिम लाइन देखिए, स्वानाम अभय दो विभुहु। विभुहु मतलब भगवान, स्वानाम स्वानाम मतलब स्वजनों को। स्वजन कौन है कृष्ण के? भक्त, हरि के जन। ये सच्चे हरिजन तो ये हैं जो भक्त है। आजकल कुछ अलग ही उसका तात्पर्य हो गया है, परंतु हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के स्वजन है। तो अपने भक्तों को स्वानाम अभय दह, अभय दिलाने वाले भगवान ने सोचा कि मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्त जो हैं वो बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही भयभीत हो गए हैं, अभी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको निडर बनाना चाहिए। अरे ये तो मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे वृंदावन के निवासी हैं, और एक मामूली देव से डर रहे हैं, वरुण देव, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि मेरा काम है मेरे भक्तों को भय से मुक्त कराना, मैं तो मेरे भक्तों को अभय प्रदान करता हूं, तो यहां वृंदावन के मेरे भक्त डर जाएं, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर तुरंत पहुंचे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वानाम अभय दह विभु। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। ये भजन हम कई बार गाते हैं। मन को हमें कहना चाहिए कि हे मन, भजहु रे मन, किसका भजन करना? श्री कृष्ण का भजन करना, जो कि अभय चरणारविंद रे। ऐसे तुम यदि श्री कृष्ण का भजन करोगे, श्री नंद नंदन का, तो तुम अभय चरण, अभय चरणारविंद, तुम उनके चरणारविंद में रह के अभय हो जाओगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको ये नाम रखा था, अभय चरण। नामकरण संस्कार में ये नाम दिया था अभय चरण। ये अभय चरण ये कृष्ण का नाम है, जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है, वो है अभय चरण। जिनके चरणों से ये सबसे बड़ा वरदान मिल जाता है अभय, कोई व्यक्ति डरता नहीं है। रामायण में भी हरे कृष्णा, लाइट, रामायण में श्री रामचंद्र कहते हैं वानरों से, जब विभीषण वहां आते हैं, सकृत एव प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददाम येतद् व्रतम् मम। जब वानर सेना देखते हैं कि विभीषण आ गया है और संशयात्मक भाव से विभीषण की ओर देखते हैं और वानरों के बीच में भिन्न मत होते हैं कि विभीषण के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, तो उस समय श्री रामचंद्र सारे वाद को समाप्त करते हैं, कहते हैं नहीं, ये मेरे पास आए हैं, मेरा शरण ग्रहण करने आए हैं और शरण देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने व्रत लिया है और अभी भी लूंगा। सकृत एव प्रपन्नो यह, जो व्यक्ति यह सकृत अपि एक बार भी प्रपन्न शरणागत हो जाएगा मुझसे मेरे चरणों में, तव अस्मि इति याचते ऐसी याचना करेगा कि तव अस्मि मैं आपका हो गया, तो फिर मुझे क्या, मैं क्या करता हूं, अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि, मैं ददामि उसे दे देता हूं उपहार, एक भेंट दे देता हूं, क्या देता हूं, अभयम् सर्वदा तस्मै, कि वो हर समय सर्वदा अभय रहेगा, डर उसे कभी नहीं होगा। एतत् व्रतम् मम, और ये मेरा व्रत है हे मेरे प्रिय भक्तों, इसलिए मैं विभीषण को दूर नहीं कर सकता। तो भगवान अपने स्वभाव से बद्ध हैं, जब कोई उनके शरण में आता है तो उनको निर्भयता प्रदान करते ही हैं। इसलिए हमेशा भक्त जो होते हैं बिल्कुल निडर होते हैं, और जिसको निडर होना है तो उसे भगवान का शरण लेना चाहिए। जैसे कि सुखदेव महाराज भागवत में कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। वो कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति च इच्छता अभयम्, जो अभय होना चाहता है, अभय होने का जो इच्छुक है, जो भय को जीत लेना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए, किनका, तस्मात् भारत, हे भारतवंशी, हे राजन परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, हरि जो कि भगवान है और सबके अंतर्यामी है, ऐसे श्री हरि या श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति निर्भय के अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी नव योगेंद्र महाराज निमि को बताते हैं कि भय इस जगत में क्यों होता है। भयम् द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद् अपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिहि तन्माययातो बुध आभजेतम् भक्तैकैषां गुरुदेवतात्मा। वो कहते हैं कि हे राजन, देखो, भय तब होता है जब अभिविनेशतः, जब हमारा मन मग्न होता है द्वितीय भगवान से किसी अन्य वस्तु में, भगवान में नहीं, किसी द्वितीय वस्तु में, किसी दूसरे वस्तु में जब हमारा मन केंद्रित हो जाता है। भयम् द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद् अपेतस्य, जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, विपर्ययः अस्मृति, और ऐसे अवस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और ऐसे परिस्थिति में वो भयभीत हो जाता है, और ऐसे भयानक अवस्था को माया कहते हैं। माया के प्रभाव से यहाँ सभी भयभीत हैं। तन मायया तो तम बुध आभजेतम, इसलिए जो बुध है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आभजेतम, वो श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है। भक्ति भक्त्या, भक्त्या अर्थात बहुत भक्ति भाव से, एक एव एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति करता है। गुरु देवतात्मा, अपने गुरु के निर्देशानुसार, अपना गुरु को ही, अपने गुरु को ही सर्वस्व मानकर वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, और तब जाकर वो भय से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं कि ऐसे 20 गुण हैं जो वो कहते हैं वो मुझसे ही आते हैं, बुद्धि ज्ञान इत्यादि। उनमें से कहते हैं वो कि भय और अभय, ये दोनों गुण जो है मुझसे आते हैं। जब भगवान कहते हैं कि भय मुझसे आता है, दो तरीकों से, एक प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि जब वो हिरण्यकश्यप के सामने आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह देव की चीख को सुनकर जब उन्होंने उस खंभे को तोड़कर वो बाहर निकले, तो हिरण्यकश्यप के गर्दन में, उसके उनके हृदय में धड़कन धड़कन हड़कड़ाने लगी, भय आ गया, ये कौन सी आवाज है, ये कौन है, लगता है मेरी मृत्यु आ गई, भय हो गया प्रत्यक्ष भगवान का सामना करके। और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान भय दिलाते हैं माया के द्वारा, या तो फिर काल शक्ति के द्वारा। तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, भगवान भय के कारण है उनके लिए, जो उनके शरण में नहीं आना चाहते हैं। और जो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उनको अभय बना देते हैं, क्योंकि उनका नाम है अभय चरण। जो भक्त इस भगवान के शरण में आराम से रहते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं अभी भी, उनको ये श्रद्धा पूर्वक ज्ञात होना चाहिए, रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है स्वानाम अभय दो दह, अपने भक्तों को वो अभय प्रदान करते हैं, इसलिए भक्तों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब आप सुबह सुबह मंगल आरती के लिए आ रहे हो और सड़क का कोई कुत्ता आपके पास आ जाता है, नहीं, कृष्ण रक्षा करेंगे। ऐसे कई भक्त हैं जो सुबह सुबह ऐसे आते हैं, कई माताएं हमने सुना था, वो रात रात को भी अकेली चली जाते हैं, दूर पैदल अपने अपने घर में जाना होता है, तो भगवान ही तो रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर ऐसी श्रद्धा है, इसलिए भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। और अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजया इति वाह तद् दर्शन महोत्सवः। प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं, प्राप्तं मतलब जब वो वहां पहुंचे, उनका आगमन हुआ श्री कृष्ण का। वीक्ष्य ऋषिकेशं, वीक्ष्य मतलब देखा, जब ऋषिकेश या श्री कृष्ण को देखा, जबकि श्री कृष्ण वरुण लोक में पहुंच गए, लोकपाल है अर्थात वरुण लोक के पालक जो वरुण देव हैं, उन्होंने क्या किया, सपर्यया तुरंत उन्होंने अपना नमस्कार किया, बहुत ही सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया श्री कृष्ण का। महत्या पूजया, पूजयायित्व मतलब उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से विविध प्रकार से अर्घ्य आदि से श्री कृष्ण की पूजा की और फिर आह और कहने लगे। क्या कहने लगे आगे वाले श्लोक में बताएंगे। परंतु वरुण देव के मन में कैसे भावना हुई जबकि उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया उस समय। तद दर्शन महोत्सव, बस ये तो आप समझ गए। श्री कृष्ण का दर्शन क्या था? महोत्सव था। तो नित्य उत्सव, नित्योत्सवम न तत्रपु दृश भी पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। तो मथुरा और वृंदावन के जो भक्त थे, जो कृष्ण को सतत देखना चाहते थे और देखते थे अपने अंतःकरण में और प्रत्यक्ष रूप से भी बाह्य रूप से भी, वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने कैसे सृष्टि की रचना की, आंखों की भी रचना ठीक से आपने नहीं की। हम तो श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनका सुंदर रूप है जो हम सतत देखना चाहते हैं, नित्योत्सवम, क्योंकि उनका दर्शन जो है ये एक उत्सव है। और ऐसे हमारे लिए वृंदावन में तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो रोज उत्सव ही है हमारे लिए, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है जिनका दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जब वरुण देव ने उनका दर्शन किया तो बहुत ही हर्षित हो गए, बहुत मुदित हो गए। इसी प्रकार से आप यदि रोज यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे तो आप भी ऐसे हर्षित हो जाएंगे और आपका भी जीवन हर दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उत्सव होगा। फिर आगे वरुण देव कहना शुरू करते हैं। श्री वरुण उवाच, अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थो धिकताह प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन अवापुः पारम अध्वनः। तो वरुण देव श्री कृष्ण से कहते हैं, अद्य मे निभृतो देहो, अद्य मतलब आज, तो आज मेरा देह सफल हो गया। मेरा जो देह का उद्देश्य है या देह का कार्य है पूर्ण हो गया, क्योंकि आपका दर्शन हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि निभृतः के दो भाग हैं, एक है नि और दूसरा है भृतः। नि मतलब नितर, नितर मतलब संपूर्ण, और भृतः मतलब शरीर। तो निभृतः मतलब अभी ये शरीर का कार्य पूर्ण हो गया, अर्थात शरीर का उद्देश्य संपूर्ण हो गया, ये शरीर सफल हो गया आज। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन हुआ। अद्य अवार्थः अधिगतः प्रभो, और अर्थ मेरे जीवन का, अर्थ मेरे जीवन का ध्येय यह प्राप्त हो गया। मेरा शरीर तो क्या, मेरा जीवन ही सफल हो गया आज, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं। और आपको देखने से कोई भी व्यक्ति इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। त्वत पाद भाजो भगवन, हे भगवन, जो आपके चरण कमलों का भजन करता है, सेवा करता है, अवापुहु पारम अध्वनः, वो परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है बहुत ही जल्दी। कवि कर्णपुर कहते हैं कि वरुण देव उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, देखिए आप हैं गर्भरत्न, क्योंकि आप देवकी के गर्भ के भीतर के रत्न हैं, और अभी आप यहां इस रत्न गर्भ के ऊपर आए हैं। रत्न गर्भ है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में बहुत रत्न है, बहुत धन है पृथ्वी के अंदर, उनके पर्वतों में, नदियों में, समुद्रों में, भूमि के भीतर तरह तरह के मणियां हैं, रत्न हैं, हीरे हैं, ये सब कहां से मिलते हैं? पृथ्वी से ही तो मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत धन है। तो पृथ्वी का और एक नाम है वसुंधरा, वसु अर्थात धन, धरा मतलब जो धारण करती हैं, तो वसुंधरा पृथ्वी का नाम है। तो वरुण देव भी यहां कह रहे हैं कि अभी आप यहां पर प्रकट हुए हैं, आप गर्भ रत्न थे, अभी आप रत्न गर्भ में आए हैं और यहां पर आकर भारावतारक है, यहां जो भी भार है पृथ्वी का आप उसको उतार रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। और आपके जो रज हैं, उस रज से मेरा रजह खत्म हो गया है। रजह मतलब रजस, रजस तमस। मेरे जो गुण हैं, आपके चरण कमलों के रज से मेरा रज समाप्त हो गया। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। भगवान के चरण कमलों से हमारे अंदर जो भी तीन गुणों का प्रभाव है, सत्व रजस तमस, ये सब नष्ट हो जाते हैं और हम ऊंची अवस्था को, परम अवस्था को प्राप्त करते हैं, भक्ति की अवस्था को। तो वरुण देव श्री कृष्ण से कह रहे थे कि हे कृष्ण, यहां पर मेरे लोक में बहुत सारे रत्न हैं, वरुण लोक में मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास कोई रत्नों की कमी नहीं है, परंतु अब आपको देख के मैं समझ रहा हूं कि ऐसा रत्न कभी मेरे पास था नहीं, अब ये सबसे मूल्यवान रत्न मुझे प्राप्त हुआ है जो मेरे तिजोरी में नहीं है। मैंने हजारों जन्म लिए हैं लेकिन वो सब असफल थे, ऐसे मैं अब समझ रहा हूं। और अब तक भी यद्यपि मैंने वरुण देव का जन्म लिया है, एक ऊंचे देवलोक के निवासी का, जो मनुष्यों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि मेरा जीवन केवल अब सफल हुआ है जबकि मैंने आपका दर्शन किया। इसके पहले मेरा जीवन सफल नहीं था और जितने भी हजारों जन्म मेरे बीत चुके उसमें मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन आज आपने ऐसी कृपा की, यहां आप मेरे घर में आए, मेरे वरुण लोक में आए, तो मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरे लोक के ऊपर रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनका जीवन भी धन्य हो गया। तो वरुण देव इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं छठे श्लोक में, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं, तुभ्यं मतलब आप, नमः हो, आपको नमन करता हूं मैं, भगवते हे भगवान, ब्रह्मणे हे ब्रह्मन, परमात्मने हे परमात्मा, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना, कभी ऐसे सुना नहीं गया है, न श्रूयते, कि आपको आपके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है, वो माया जो कि लोक सृष्टि विकल्पना, वो माया जिससे कि इस भौतिक सृष्टि की रचना होती है, उस माया के ऊपर आपका प्रभाव है, ऐसा कहीं भी नहीं सुना गया है। श्रूयते, तो श्रूयते का तात्पर्य है कि श्रुति, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, तो ऐसे शास्त्रों में कहीं नहीं पाया जाएगा कि ऐसे कहा गया है कि श्री कृष्ण माया में फंस जाते हैं। नहीं, आप सदैव माया के स्वामी हैं और अन्यों को माया से मुक्त करने वाले आप हैं, इसलिए आप कभी भी माया में नहीं आ सकते। बल्कि मैं समझता हूं कि मैं माया में था, इसलिए मैं मेरे यहां के ऐश्वर्य से, रत्नों से, इन चीजों से मैं इतना प्रभावित हो गया था कि माया का पर्दा मेरे आंखों के सामने था और मैं आप भगवान को समझ नहीं पाया, और आपने ऐसी कृपा की कि आप स्वयं यहां मेरे लोक में चले आए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, तो मैं आपका बहुत आभारी हूं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वरुण देव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको पहुंच आप तक पहुंचने के लिए भक्ति योग का पथ है, ज्ञान योग का पथ है और अष्टांग योग का भी पथ है। और इन तीनों से जो भक्ति योग है वो आपको भगवान कह के जानते हैं, आप परम सत्य हैं। और जो ज्ञान योगी हैं वो आपके निराकार स्वरूप को पहचानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हैं। और जो अष्टांग योगी हैं वो आपको परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान ऐसा जानते हैं। तो आप अंततः हम सबके कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और आज यहाँ पर आप मेरे ऊपर और मेरे लोक के निवासियों के ऊपर कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए आप आए हैं। फिर और कहते हैं वरुण देव, अजनता मामकेन अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तत् भवान क्षन्तुम अर्हति। अजानता मामकेन मूढ़, मेरे ये सेवक है मूढ़ है, मूर्ख है, वो आपके पिता को यहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर आए क्योंकि वो अज्ञानी है। और कार्य वेदिना, उनका उनका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है उनके, उनको पता नहीं, गलत कर लिया काम उन्होंने। आनी तो अयम तब पिता, आनी तो आनला है, आनी तो अयम, अयम मतलब ये, जैसे वो इशारा कर रहे थे, ये आपके पिता, आनी तो अयम पिता तब पिता। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नंद महाराज को वरुण देव ने एक रत्नों के सिंहासन पर बिठाया था, उनकी पूजा आदि कर ली थी, जबकि कृष्ण उसके पहले कि कृष्ण पहुंचे नंद महाराज का आदर सत्कार किया था वरुण देव ने। तो इसलिए श्री कृष्ण से कहते हैं कि आनी तो अयम तब पिता, कि मेरे मूर्ख सेवकों ने आपके पिता को यहां ले आए। तद भवान क्षन्तुम अर्हति, इसलिए आपके लिए उचित ये है कि आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत गलती हुई। हालांकि मैं नहीं ले आया, मेरे सेवक ले आए, लेकिन सेवक की गलती के लिए स्वामी जिम्मेदार होता है, इसलिए मेरी गलती है, इनको अब दंड मत दीजिए, अब दंड मुझे दीजिए। आप तो क्षमा के सागर हैं और मैं अपराधों का सागर हूं, इसलिए केवल दंड के लिए ही मैं अभी योग्य हूं। तो आप जैसा उचित समझे मेरे ऊपर मुझे दंड दीजिए, जिस तरह आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं वैसे करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मालिक को नौकर के गलतियों का की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस दृष्टि से सेवक के लिए अच्छा होता है। तो भगवान कहते ही हैं, जैसे हम पहले भी उदाहरण दे चुके हैं कि जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो शाकाहारी भोजन में भी तो थोड़ी हत्या होती है ना पौधों की, तो उस हत्या का भी पाप हमें भुगतना पड़ता है। परंतु जब हम श्री कृष्ण को ये भोग अर्पण करते हैं तो वो पाप भगवान ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों से कि आप मुझे ये भोग अर्पण कर रहे हो ना, आप मेरे सेवक बने हो ना, तो तुम जो करोगे उसका मैं मेरे सर पे ले लूंगा। उसी प्रकार से शिष्य जब गलती करते हैं तो गुरु को भुगतना पड़ता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा एक बार, उनके शिष्यों ने, कि प्रभुपाद जी वैसे साधारण जगत में जो लोगों को बीमारी आदि होती है तो वो उनके बुरे कर्मों के कारण होती है, वो पाप करते हैं तब होता है, परंतु आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपको ऐसे कष्ट क्यों हो रहा है बार बार? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मेरे शिष्य ठीक से नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो मैंने उनको शिष्य स्वीकार किया है, उनको दीक्षा दी है मैंने, तो मुझ पर यह परिणाम हो रहा है, एक बार प्रभुपाद ने ऐसे कहा था। तो शिष्यों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करे। हम देखते हैं कि अजामिल की कथा में यमदूत आए थे और जब विष्णुदूत वहां आए यमदूतों को रोकने के लिए, तो यमदूत चले गए, अरे ये क्या हो रहा है, यमराज के पास कि आपसे भी बढ़कर कोई यहाँ प्रभु हैं क्या? बोलो है ही, तो मेरे आराध्य देव हैं भगवान नारायण, तो आपने पहले हमें बताया नहीं। अरे तुम्हें जानना चाहिए था, तुमने जाके अजामिल को गिरफ्तार करने का करना चाहा, ये तो ठीक नहीं है। तो यमराज ने अपने आप को दोषी समझा क्योंकि उनके सेवकों ने गलती की थी, उनको भी पता नहीं था अकार्य वेदिना कि सही कर्तव्य क्या है, कि किसको दंडित करना चाहिए किसको नहीं। इसलिए जब यमदूत यमराज के पास आए तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यही कहा कि ये बताइए कि किसको दंड देना चाहिए किसको नहीं, अभी हम भ्रमित हो गए, आपने हमें ड्यूटी में भेज दिया, कर्तव्य जाओ जो पापी लोगों को पकड़ के दंड दे दो, ले आओ यहाँ पर। अब ये अजामिल तो पापी था, हम गए उसको ले आने के लिए और अब विष्णुदूत आए कहने लगे नहीं नहीं तुम गलती कर रहे हो, तो हम कुछ भ्रमित हो गए कि सत्य क्या है। फिर यमराज ने उनको समझाया। उसी प्रकार से जब चतुष कुमार वैकुंठ के द्वार पर गए थे और जय और विजय जो द्वारपाल थे वैकुंठ के, उन्होंने उनको रोक दिया, तो चतुष कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। तो बाहर ये सब जब चल रहा था तो अंदर से भगवान विष्णु जल्दी से आए कि क्या हो रहा है बाहर, और अपने द्वारपाल जय विजय की ओर से उन्होंने चतुष कुमारों के चरणों में क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर देना, ये मेरे सेवक हैं, उन्होंने गलती की, ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था आपको रोकना, तो वो मेरे सेवक हैं, तो सेवक की गलती तो मालिक को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए मैं ये गलती स्वीकार करता हूं, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। तो ये है सेवक और स्वामी का संबंध। तो इसलिए हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि जब भी हम इस संसार में रहते हैं, चाहे मंदिर के अंदर या बाहर, हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए हमेशा जिससे कि हमारे गुरुजन के ऊपर, हमारी गुरु परंपरा के ऊपर ये कभी बुरा परिणाम न हो। फिर आगे वरुण देव कहते हैं, ममापि अनुग्रहम कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेष दृक् गोविंद नियताम एष पिता ए पितृवत्सलः। मम अपि अनुग्रहम कृष्ण कर्तुम अर्हसि, तो हे कृष्ण आप तो अशेष दृक् हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, आपकी दृष्टि सीमित नहीं है, शेष नहीं होती आपकी दृष्टि, आपकी दृष्टि अशेष है, तो कृपया मेरे ऊपर अनुग्रह आप कीजिए, कृपा कीजिए, आप गोविंद हैं बहुत कृपालु हैं। और तुरंत नियताम एष पिताते पितृवत्सलः, अब तुरंत आपके पिता नंद महाराज को आप ले जाइए क्योंकि आप पितृवत्सल हैं, आपके माता पिता यशोदा माता नंद महाराज को आप बहुत प्रेम करते हैं, तुरंत इनको ले जाइए, और साथ साथ में मेरे लोक में जितने भी रत्न हैं, जितने भी हीरे हैं, जितना भी धन है वो सब आप ले जाइए, क्योंकि वास्तव में ये सब आप ही का है, ये धन की बात क्या है, मैं भी तो आप ही का हूं, तो जो चाहें आप मुझसे कर सकते हैं। और ऐसे नम्र भाव को स्वीकार करके सर झुकाकर वरुण देव श्री कृष्ण के सामने करबद्ध अवस्था में ऐसे खड़े रहे। और आगे फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण ने कैसा बर्ताव किया, वो यदि आपको जानना है तो कल शाम को आना है, कल अंतिम दिन है इस श्रृंखला का, परसों तो जन्माष्टमी है, ठीक है, तो अभी हम एक भजन गाएंगे उस व्यक्ति के बारे में जो कि व्रज में बहुत प्रसिद्ध है, कौन है वो, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।